अथ तृतीयोऽध्यायः। परम सौभाग्य है हमारा कि भगवान ने हमें श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण एवं पठन करने का अवसर प्रदान किया है। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय को शुभारंभ करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और ये बहुत डीप है, बहुत ही गहरा है। और इस अध्याय में संपूर्ण श्रीमद् भागवतम का एसेंस बताया जाएगा कि वास्तव में श्रीमद् भागवतम के अंदर जो कुछ भी आने वाला है। और इसमें ये भी बताया जाएगा कि कृष्ण ही सर्व कारण कारण है और उसका पूरा डिटेल से बताया जाएगा। और समस्त जीव आत्मा को जीवन की उस उद्देश्य अर्थात कृष्ण की भक्ति स्वीकार करनी चाहिए और जीवन का उद्देश्य कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण को प्रेम करना ही है। और केवल कृष्ण ही पूज्य है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। इससे जब दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 26 में सुत्त गोस्वामी ने कहा था, मुमुक्षवो घोर रूपान इत्वा भूतपति नथ नारायण कला शांति भजंती ह्यनसूयवे, के जो मुमुक्षव होते हैं वो भगवान के दूसरे देवताओं के जितने भी देवता होते हैं उनकी भक्ति नहीं करते बल्कि नारायण कला शांति भगवान नारायण के पास जाते, भगवान विष्णु के पास जाते हैं और आगे उसी विष्णु को ही जीवन का लक्ष्य बताया। क्योंकि 27 में क्या बताया, रजस्तम प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेदा प्रजेशादीन शयैश्वर्य प्रजेप्सव, के देवताओं के पास कौन जाते हैं, जो लोग रजो तथा तमोगुणी होते हैं वे पितरों अन्य देवताओं तथा अन्य जीवों की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी गतिविधियों के प्रारंभिक प्रभारी हैं। पूजा करते हैं क्योंकि वे स्त्री धन शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। लेकिन श्लोक नंबर 28 और 29 में एकदम क्लियर कर दिया कि वास्तव में वेदों का लक्ष्य क्या है, योग का लक्ष्य क्या है, ज्ञान का लक्ष्य क्या है और धर्म का लक्ष्य क्या है और परम गति क्या है। अत्यंत ही सुंदर श्लोक 2.28-29 में हमने पढ़ा, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव पर तपम वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागति, के वास्तव में सर्व कारण कारण जितना भी हम कार्य करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसका अल्टीमेट गोल क्या है, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण को प्राप्त करना। और इसके बाद श्लोक नंबर 30 से लेकर श्लोक नंबर 34 तक संक्षिप्त में जगत रचना, इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत की रचना के विषय में बताया। जैसे 30 में कहा, स एवेदम स सज्जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसत रूपया चासो गुणमया गुणो विभू, कि अर्थात इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उस भगवान यानी वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंग शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। और 31 में कहा, तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंत प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभित, कि भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव ने अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हुए, यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों से एक लगते हैं किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्णतया अलौकित रहते हैं। कि भगवान की दिव्यता चाहे वो संसार में हो, चाहे भौतिक जगत में हो, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, दिव्य ही रहते हैं। और उनके आने के विषय में बताया 32 में, यथा ह्यवहितो वहने हाँ, कि हृदय के अंदर वो किस तरह से होते हैं, जिस तरह से काट के अंदर अग्नि होती है, और दारुश्वी कस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा भूमा, कि जिस प्रकार अग्नि लकड़ी के अंदर होती है और दूध के अंदर मक्खन होता है, उसी तरह भगवान भी समस्त जीवों के हृदय में होते हैं। लेकिन उसको रियलाइज करने के लिए भी एक परिक्रिया होती है, यानी गुरु साधु और शास्त्र का सहारा लेकर ही हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद बताया 33 में, असौ गुणमय भाव भूत सूक्ष्म इंद्रियात्म भी स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भूंते भूतेषु तद्गुणा, परमात्मा भौतिक प्रकृति गुणों से प्रभावित अपने द्वारा उत्पन्न जीवों के शरीर में प्रविष्ट कर देते हैं और उन्हें सूक्ष्म मन के द्वारा इन गुणों के प्रभावों का भोग करने देते हैं, कि वो आगे हृदय के अंदर बैठ जाते हैं और वहां पर उपदृष्टा अनुमंताच वहां पर बैठ कर उनको बोलते, ठीक है तुम्हारी जो इच्छा थी अब तुम करो। और उसके बाद अंतिम श्लोक में हमें बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान के अवतार लेने का कारण बताया, भावयतीश सत्वेन लोकान्वय लोक भावन लीलावतारानुवर्तो देवतेर्यंगनरादिषु, कि इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे लोक का पालन पोषण करने वाले हैं और अवतार ग्रहण करके सत्वगुण में रहने वालों को उद्धार करने के लिए लीलाएं भी करते। जब ऋषियों ने ये सब सुना तो उनकी इच्छा हुई कि ये इतना संक्षिप्त में बताया इन्होंने कि इस तरह से भगवान जो है वो प्रवेश कर देते हैं महातत्व में और सृष्टि की उत्पत्ति होती है और फिर किसी रूप से हृदय के अंदर आ जाते हैं और कोई रूप से वो लीलाएं करते हैं। तो उनकी ऐसी इच्छा हुई कि क्या ये सब हम डिटेल में सुनना चाहते हैं, क्योंकि इतने से तो अब आपको अगर यही सिर्फ पता चल जाए तो कैसा लगेगा कि वाकई में ऐसा भगवान करते हैं तो कैसे करते हैं, वो हम डिटेल से सुनना चाहते हैं, हम किस तरह से भगवान वासुदेव ये सब कर रहे हैं, किस तरह से इस महत्त्व में सृष्टि की उत्पत्ति होती है और कैसे भगवान अलग अलग अपने स्वांशों से अलग अलग रूप धारण करते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 42, भगवान ने पूरा का पूरा जितना भी ज्ञान है ना वो इस एक श्लोक के अंदर समेट के दे दिया। अर्जुन को पता है क्या बोला, अथवा बहुते नयन अथवा बहु नयते न किम ज्ञाते न तवार्जुन विष्टव्याहम इदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा बहुतेन किम, बहुनेतेन किम, बहुनेतेन का क्या मतलब होता है कि ये इतना सारा बहुत बहुत है ना ज्ञान प्राप्त करने की, किम ज्ञाते न तवार्जुन, तुम्हें जानने की क्या जरूरत है, ये सब तुम डिटेल में मुझसे क्यों पूछ रहे हो। क्योंकि भगवान से अर्जुन ने पूछा था ना कि मैं आपकी विभूतियों के विषय में जानना चाहता हूँ, तो भगवान ने कहा अथवा बहु नयते न किम ज्ञाते न तवार्जुन, ये सब डिटेल में जानने की क्या जरूरत है तुमको, तुम खाली इतना जान लो क्या, विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम एकांक्षेन स्थितो जगत्, मैं तो अपने एक अंश मात्र से एकांक्षेन स्थितो जगत, सिर्फ एक ही अंश से इस पूरे जगत में स्थित हो जाता हूँ, व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ, विष्टव्याहम मैं ही करता हूँ, तुम खाली इतना जान लो बस। और तुम्हें जब ये खबर पड़ जाएगी कि मैं ही पूरे संसार में पूरे जगत में अपने एक अंश से स्थित हो जाता हूँ और मैं उसको पालन कर रहा हूँ, तो बस तुम मेरे मुझसे प्रेम करो, मेरी भक्ति करो, और कुछ तुम्हें करने की क्या आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, अनुवाद देखिए, अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, भगवान कहते हैं किंतु हे अर्जुन इस सारे विशुद्ध ज्ञान की क्या आवश्यकता है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। इससे ऐसा लगता है कि बस इतना जान लेना काफी है ना कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा के स्वरूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसीलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। विष्टव्य अहम कृत्स्नम एकांक्षेन स्थितो जगत, भगवान का एक छोटा सा अंश है जिससे ये पूरी सृष्टि पूरी सारे लोक जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो इतना ज्ञान होना काफी है, परंतु भक्तों की सदैव ये इच्छा होती है क्योंकि जिससे हम प्रेम करते। अब ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है और उनसे प्रेम करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो प्रेम जिससे हम करते ना उसके विषय में सब कुछ जानना चाहते। जैसे अगर कोई लड़की किसी से प्रेम करती है तो वो ठीक है, अब वो प्रेमी है, उसके सामने खड़ा है तो उससे प्रेम करे ना, फिर उसकी माता से पूछेगी कि वो बचपन में कैसे करता था, उसने ये कैसे किया था, वो उसने बोलना कैसे शुरू किया और वो स्कूल जाता था तो कैसे, और जो 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 बातें उसको बताते थे तो कितना अच्छा लगता है उसको कि, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स जानना चाहते हैं ना कि वो कैसे, मतलब उसके विषय में सब कुछ जानना चाहते हैं। हालांकि अब ठीक है, अब वो जो भी किया उसने किया, लेकिन फिर भी ये प्रेमी का स्वभाव है कि अपने प्रीतम के विषय में सुनने से उसकी तृप्ति नहीं होती है। वो बोलता है मैं और भी सुनूं, आखिर मेरे प्रीतम ने इतने सारे करिश्मे किए, वो पूरे संसार में किस तरह से व्याप्त है, उसने कैसे सृष्टि की रचना की। वो अपने प्रेमी के कार्यकलापों के विषय में सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होता है। उसका दिल करता है कि मैं सुनता रहूं अपने जिससे मैं प्रेम करता हूं उसके समस्त कार्यों को, उसके समस्त जो उसने कर्तव्य किए हैं, जो उसने लीलाएं चमत्कार किए हैं, उन चमत्कारों के विषय में सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। तो मुनियों की इस हृदय की लालसा को जानते हुए सुत गोस्वामी ने इसी चीज को बहुत डिटेल से बताना शुरू किया है कि उस वासुदेव ने किस तरह से विस्तार किया और किस तरह से इस सृष्टि की रचना की। अत्यंत ही सुंदर तरीके से इस सृष्टि रचना के विषय में आज सुत गोस्वामी हमें बताना प्रारंभ करेंगे। आज हम तीसरा अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है कि अब देखो कृष्ण लीला हमें कहाँ पर, दसवें स्कंद में हमें मिलने सुनने को मिलेगी, यानी कि वो दसवां स्कंद है कृष्ण लीला का। लेकिन आज तक हम भागवतम में जो भी पढ़ते आए हैं वो कंटिन्यूअस कृष्ण से ही रिलेटेड है। कृष्ण कृष्ण ने वासुदेव परम योगा, वासुदेव कृष्ण की ही बातें हो रही है। अभी भी जो हम ये सृष्टि रचना के विषय में बता रहे हैं तो इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इस सृष्टि रचना का स्रोत कृष्ण है। तो सुच्ची जानते हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त यदि मैं किसी और के विषय में बात भी करूंगा तो वो मेरे समय का अव्यय है, उपव्यय है। यानी ऐसे कहते हैं यह श्रवताम क्षणो यापी वासुदेवन चिंतन। अगर एक क्षण के लिए भी हम कृष्ण के विषय में नहीं सुन रहे हैं, कृष्ण की ये सब कृष्ण से रिलेटेड है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये सब कृष्ण ने किया है इसलिए इम्पोर्टेंट है, और कृष्ण के ने जो भी किया है वही उसी के विषय में सुनना, उसी के विषय में पढ़ना, यही उसी के विषय में विचार करना ही एक कृष्ण प्रेमी या कृष्ण भक्त का उद्देश्य है। तो कृष्ण ने सृष्टि की रचना कैसे की आज से सुत गोस्वामी बताना प्रारंभ करते हैं। अत्यंत सुंदर श्लोक है, कृपया मेरे साथ साथ नहीं उच्चारण करने से पहले मंगल आचरण करते हैं ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधारुण बिंबफलदरोष्ठा पुलेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णांतरं किमपि तत्व अहं न जानि। यं प्राव्रजन्तमनुपि तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तरु वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 1। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत उवाच जागृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसिसृक्षया जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसिसृक्षया जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसिसृक्षया जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसिसृक्षया जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसिसृक्षया जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसिसृक्षया जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसिसृक्षया जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसिसृक्षया। अत्यंत ही सुंदर यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले शब्दों का अर्थ देखिए। सूत उवाच, सूत ने कहा, जगृहे अर्थात स्वीकार किया, पौरुषम यानी पुरुष अवतार रूप में, पुरुष रूप में पूर्णांश, और रूपम यानी रूप स्वरूप किसने, भगवान। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है ना, वो भगवान है, कि भगवान ने क्या किया, स्वीकार किया है किसको, पौरुषम रूपम। वो भगवान, अब भगवान की व्याख्या जो है वो बहुत बहुत की गई है ना शास्त्र में। भगवान की सबसे परिपूर्ण व्याख्या है कि जिसके अंदर षडेश्वर्य हो, जैसे पराशर मुनि जो कि वेद व्यास जी के पिताजी हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर भगवान के विषय में बताया, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान विज्ञान ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनाम भग इति गण, कि जिसके अंदर जो संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण धन, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश हो, वही भगवान कहला सकता है, षडनाम भग इति गण। तो यहाँ पर अगर हम श्लोक नंबर 2 ना प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 28 और 29 को देखेंगे, तो उससे हमें क्या पता चलता है, वासुदेव ही भगवान है, क्योंकि समस्त कारणों के कारण, सारे यज्ञों के लक्ष्य, सारे वेदों के लक्ष्य, सारी गति जो है वो क्या है, वासुदेव ही है। तो वहां पर ये भगवान जो है वो स्पेशली वासुदेव के, क्योंकि ये श्री में जा रहा है ना, वो अभी तक उत्तर दे रहे हैं, अभी तक तो जो इनका सेकंड क्वेश्चन है ना, क्या सेकंड क्वेश्चन था, कि सारे जितने भी शास्त्र हैं उसकी सारभूत वस्तु क्या है, तो वासुदेव है। अब वासुदेव ही है तो उसी के विषय में बता रहे हैं अभी तक डिटेल से, क्योंकि तीसरा क्या है कि भगवान, मतलब बात के श्लोक के सवाल क्या है कि भगवान ने क्यों आए थे, भगवान ने अवतार क्यों लिए थे, लेकिन ये पहले तो सारभूत वस्तु तो बता दें, सही तरह से उनको डिटेल से कि सारभूत वस्तु तो भगवान ही है और भगवान कौन है, वासुदेव है। और ये भगवान जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जगृह पौरुषम रूपम, जगृह मतलब स्वीकार किया। अब वो वास्तव में वो भगवान है, ठीक है, उन्होंने उन्होंने ही पौरुषम रूपम। अब पौरुषम यहाँ पर एक शब्द आता है जो जाहिर करता है, मतलब जिससे क्या हमें पता चलता है, पर्सन है वो पौरुषम, यानी वो एक पर्सन है। यहाँ पर पौरुषम का क्या मतलब बताया गया, पुरुष अवतार रूप में पूर्ण अंश, पर्सन है, इम्पर्सन नहीं है। यानी वो पौरुषम रूप जो है वो निराकार नहीं है, है ना, उसका जरूर अस्तित्व है। और ये पूरी जो संसार की जो रचना हुई है वो ऑटोमेटिकली नहीं हुई है, एक पुरुष रूप से भगवान ने अपना विस्तार किया। एक पुरुष ने, यहाँ पर तीन पुरुषों के विषय में बताया जाएगा। ये पहला जो श्लोक है उसमें हम कारण दक्षाय विष्णु के विषय में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर बता क्या रहे हैं कि ये पूरी सृष्टि जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं आई कि बस संसार में खुद ब खुद बन गया संसार और सृष्टि बन गई और जीवात्मा आ गई और खुद ब खुद हो रहा है ये सब कुछ, ऐसा नहीं है। एक पूरा सुव्यवस्थित प्लानिंग से भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है, कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो सुमेध दशा होते ना, जिनकी बुद्धि जो होती है वो पवित्र होती है, वही इस चीज को समझ सकते हैं। बाकी सुमेध दशा का क्या मतलब होता है, मेध कहते हैं बुद्धि को, सु मतलब जिसकी बुद्धि सुव्यवस्थित होती है, जिसकी बुद्धि परफेक्ट होती है, वो इस बात को समझ सकते हैं कि क्योंकि एक छोटी सी चीज को उगाने के लिए भी हमें उसको स्रोत देना होता है। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं आता है। एक पेपर पे यदि हम एक फ्लावर को ड्रॉ करते हैं तो वो ड्रॉ करने के लिए भी एक व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके पावर से वो बनता है। तो ये इतनी सुव्यवस्थित रचना है, ये इतने सारे ग्रह हैं जो अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, को स्वयं भी घूम रहे हैं और खुद और वो स्वयं भी घूम रहे हैं और इसके इर्द गिर्द दूसरे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ये सृष्टि की रचना, दिन होना, रात होना, ऋतुएं अपने समय पर आती हैं, जाती हैं, हर चीज एक प्लानिंग के साथ हो रही है। फ्रूट्स अपने टाइम पर आते हैं और है ना, दिन होता है, रात होता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा उदय होता है, सर्दी होती है, वर्षा आती है, ऋतु, हर चीज इतनी प्लानिंग के साथ हो रही है। तो एक छोटा सा घर में भी अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए भी एक बुद्धि चाहिए होती है, एक पुरुष की यानी एक व्यक्ति की शक्ति। कुछ अगर साइंस भी बोलेगी तो साइंस क्या कहेंगे कि हाँ ये ग्रेविटी फोर्स से है ना सब कुछ हो रहा है, ये ग्रह आपस में टकराते हैं। फोर्स मान लिया कि वो फोर्स है, वो शक्ति है, लेकिन शक्ति शक्तिमान के बगैर कैसे हो सकती है ना। शक्ति है तो शक्तिमान होना, ये जो पुरुष लिखा हुआ है ना वो शक्तिमान की व्याख्या कर रहा है कि वो शक्तिमान है और वो शक्तिमान भी, ये जो शक्तिमान है वो भी परम शक्तिमान यानी भगवान का अंश है। भगवान ने उसके रूप में पुरुष रूप में अपने आप को स्वीकार किया, पुरुष रूप लेना। जगृह का मतलब होता है स्वीकार करना, पौरुषम रूपम यानी पुरुष का रूप स्वीकार किया, किसने, भगवान ने। और आगे महद आदि भी, महद कहते हैं ये महद तत्व जिसको बोलते हैं ना, भौतिक तत्व, भौतिक जगत की अव्यय, जैसे उसके विषय में अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। और संभूतम यानी इस तरह उत्पन्न हुए, जब इस किस तरह से उत्पन्न हुए कि जो भगवान हैं उन्होंने पुरुष रूप स्वीकार किया और उसने महत तत्व जो है उसके साथ उसको भी स्वीकार किया या उनको प्रकट किया और उस तरह से सब कुछ उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, षोडश कलम यानी 16 मुख्य सिद्धांत। अब 16 मुख्य सिद्धांत कौन से हैं, वो महतत्व, वैसे तो 24 तत्व होते हैं उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर 16 की बात की जाएगी। 16 क्या है, 5 स्थूल तत्व हैं, कौन से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है, ये 5 स्थूल तत्व। उसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, पांच ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, पांच कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, जिह्वा, लिंग तथा गुदा और एक मन। कितने हुए? 16 हुए ना। तो इन षोडश कलम यानी 16 मुख्य सिद्धांत, इनको अभी हम इनके विषय में बात करेंगे। अभी देखो 24 तत्व होते हैं, ये फिर भी हमें याद रखना है। अब इसमें से 16 में से और 8 कौन से हैं? 8 कौन से हैं? 5 इंद्रियों के विषय हैं, क्या? रूप, रस, स्वाद, गंध और स्पर्श। और 3 क्या हैं? मन, बुद्धि, अहंकार। उसके विषय में बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? षोडश कलम यानी 16 मुख्य सिद्धांत। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शब्द है आदव। आदव का मतलब होता है प्रारंभ में, यानी अभी तक भगवान ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले यानी उससे पहले कुछ नहीं किया था, प्रारंभ में क्या किया? पौरुषम रूप स्वीकार किया, ठीक है, और उसके साथ महतत्व को भी, महतत्व की उत्पत्ति की। महतत्व यानी महतत्व आदि भी यानी भौतिक जगत के अव्ययों को भी उसी समय उत्पन्न किया। षोडश कलम 16 सिद्धांत, 16 मुख्य सिद्धांतों को आदव यानी स्टार्ट में। और लोक यानी ब्रह्मांड सिसृक्षया उत्पन्न करने का विचार। और फिर जब वो पुरुष अवतार में, अब यहाँ पर पहले पुरुष अवतार, अब देखो 3 पुरुष अवतार होते ना, कौन से? कारण दक्षाय विष्णु, गर्भो दक्षाय विष्णु और क्षीरो दक्षाय विष्णु। यहाँ पर जो महतत्व जिसने स्वीकार किया है और जो पहले प्रथम पुरुष है यानी कारण दक्षाय विष्णु, जिसने लोक सुशिक्षया यानी लोक उत्पन्न करने का विचार किया, ब्रह्मांड उत्पन्न करने का विचार करने के लिए सबसे पहले भगवान ने पुरुष अवतार लिया, वो है कारण दक्षाय विष्णु, ठीक है। उसके विषय में यहाँ पर पूरा बताया जा रहा है। अनुवाद देखें। सूत ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृष्टि के लिए सारे अव्यय यानी तत्व प्रकट किए। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक सृष्टि के 16 तत्व उत्पन्न हुए। भौतिक ब्रह्मांड की उत्पन्न करने के लिए ही यह सब किया गया। समझ में आ गया? एक बार फिर से पढ़ते हैं। सूत ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृष्टि के लिए सारे अवयव यानी तत्व प्रकट किए। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक सृष्टि के 16 तत्व उत्पन्न हुए। भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ही यह सब किया गया। अब भगवान ने भौतिक ब्रह्मांड क्यों उत्पन्न किया, अगर ये प्रश्न है तो इसका उत्तर पहले ही आ गया था, क्योंकि जीव ने इच्छा की थी प्रभुत्व जताने की, है ना। तो भगवान ने कहा कि क्योंकि गौलोक में तो तुम प्रभुत्व नहीं जता सकते, तो उसके लिए मैं तुम्हारे लिए सृष्टि की रचना कर देता हूँ। ये बताया था ना मैंने आपको। तो सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान ने सबसे पहले क्या किया? जयगृहे पौरुषम रूपम, पहले पौरुष रूप स्वीकार किया और भगवान महद आदि भी और प्रकृति के जितने भी महद आदि हैं उनके सहत, और संभूतम षोडश कलम और जितने 16 कला हैं या 16 अव्यय हैं उनके साथ आदव लोक सृष्टया, और इस तरह से लोक की सृष्टि की। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। भगवान ने कहा था ना, अभी हमने पढ़ा 10.42, विष्टभ्याहम इदं कृष्णं एकांक्षेन स्थितो जगत, कि मैं अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांडों में व्याप्त होकर इसको धारण कर रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें उसी के विषय में बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि करता है। अब पालन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रूप लिया होगा जिसकी वजह से वो पालन कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सा रूप लिया, जगृहे पौरुषम रूपम। तो ये जो पुरुष रूप की विस्तार यहाँ पर बताया जा रहा है, आदि भगवान या कृष्ण भगवान जो राजा वासुदेव या राजा नंद के पुत्र में विख्यात हैं, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भले वो यहाँ पर लीला करने के लिए, पहले हमने पढ़ा ना कि वो लीला करने के लिए आते हैं, भले लीला करने के लिए वसुदेव और नंद महाराज के पुत्र दिखते हैं, परंतु वह वास्तव में भगवान है। भगवान जगृह, जिन्होंने जगृह पौरुषम रूपम भगवान महादादी भी, वो भगवान है। और भगवान की व्याख्या यहाँ पर बताएं कि जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण वैराग्य है। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है तो एक अंश परमात्मा के रूप में, जिसके विषय में हमने पढ़ा 1.2.11 में, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो उसके एक अंश से परमात्मा और एक अंश से निराकार ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पौरुष रूप भगवान का आदि परमात्मा स्वरूप है। अब ये पौरुष रूप जो अभी फर्स्ट आया है ना, उसके विषय में बता रहे हैं कि वो आदि परमात्मा स्वरूप है। और भौतिक सृष्टि में तीन पुरुष रूप हैं और यह रूप जो कारण दर्शाए विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। अब ये जो पहला बताया जा रहा है ना, वो कारण दर्शाए विष्णु है जो लोक यानी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करेगा। वैसे तो तीन है लेकिन वो पहला है, उसको कारण दर्शाए विष्णु, ये प्रथम है। ठीक है, अन्य रूप है गर्भो दक्षाय विष्णु तथा क्षीरो दक्षाय विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः आगे जानेंगे, आगे बताया जाएगा उनके विषय में। आज किसके विषय में बताया जा रहा है, कारण दक्षाय विष्णु के विषय में। इन कारण दक्षाय विष्णु के रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भो दक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। समझ में आया, जब कारण दर्शाए विष्णु कारण व समुद्र में, अब भगवान ने वो कारण दर्शाए रूप एक्सेप्ट किया, जगृह पौरुषम रूपम, उनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भो दक्षाए रूप में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत ही सुंदर। और फिर गर्भो दक्षाई जब लेटेंगे उसके उनकी नाव से वो कमल निकलेगा, उसमें से ब्रह्मा जी, वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बताया, भगवत गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत विशेष विधि के लिए उत्पन्न किया गया है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। कल्पाक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। ऐसा बताते ना भगवान 7.9.7 में के कल्प के अंत में संपूर्ण सृष्टि मेरी प्रकृति में लय हो जाती है और नए कल्प के आरंभ में अपनी शक्ति द्वारा मैं उसे फिर रचता हूँ। उसी के विषय में यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवद गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत विशेष अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर लिया जाता है। यह सृजन तथा संहार बद्ध जीवों या नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। और क्यों किया जाता है यहाँ पर, बद्ध जीवों के लिए, क्योंकि बद्ध जीवों की इच्छाएं हैं और नित्य बद्ध जीव हैं, उनके लिए भगवान ने अपनी इच्छा से ये उत्पन्न किया होता है। और आगे क्या बता रहे हैं कि नित्य बद्ध जीव में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते। अब जो नित्य बद्ध जीव हैं उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है इंद्रिय भोग की और वो स्वाभाविक रूप में उन्हें भोग नहीं कर सकते। मतलब स्वाभाविक रूप क्या है, स्वाभाविक रूप दासत्व है। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसको भगवान की सेवा करनी, इंद्रिय भोग नहीं करना, तो स्वाभाविक रूप में वहां पर रहकर वो नहीं कर सकते। इसलिए भगवान क्या करते, सृष्टि की रचना करते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा श्री प्रभुपाद ने बताया कि उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश उसके हृदय के अंदर होता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें यह भोग नहीं मिल सकते। भगवान ही एकमात्र भोक्ता होता है और शेष सब भोग्य हैं। वास्तव में तो यही है ना कि भगवान भोक्ता है और हम सब भगवान को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन जीव पराधीन भोक्ता है। जीव भी वो एक भोक्ता बनना चाहता है तो वो पराधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की परम इच्छा करता है। अब विस्मरण होता है कि मैं दासत्व को स्वीकार नहीं करना चाहता है, वो स्वामी बनना चाहता है, प्रभुत्व जताना चाहता है, तो वो क्या करता है, इसी के कारण, विस्मरणता के कारण वो भोग की परम इच्छा करता है। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ बोने का अवसर प्राप्त होता है, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का भी अवसर प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर सृष्टि में भगवान की इतनी परम करुणा है, इतनी भगवान की विशेष करुणा है कि उनको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भोग भी प्राप्त हो रहा है, किंतु उसके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का भी अवसर प्रदान किया। भगवान ने वेद दिए, भगवान ने गुरु दिया, भगवान ने शास्त्र दिए, भगवान ने कण कण के, अगर हम थोड़ा सा भी डीप जाएंगे तो हमें पता चलेगा क्या, जन्मादस्य यतोन्वयादि तरतश। किसी भी चीज को आप देखो, वायु को देखो, जल को देखो, सूर्य को देखो, तो हमें ये पता चलता है कि ये सब करुणा है। तो भगवान जो है वो सृष्टि की रचना से जीव को यह याद दिलाने का सदैव प्रयत्न करते रहते हैं कि देखो मेरी तुम्हारे ऊपर कितनी करुणा है। तो इसकी भी क्यों करते हैं कि वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर प्रदान करते हैं। भगवान चाहते हैं कि जीव किसी ये न कहना प्रकारे अपनी रियल स्थिति में आ जाए। भगवान को जीव के दासत्व की आवश्यकता नहीं, तभी तो उसने भेज दिया। लेकिन भगवान ये जानता है कि जीव जब तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो जाता है, जब तक अपने वास्तविक स्थिति में स्थित नहीं हो जाता है, तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। इसी भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, उन्हें भोग भी प्रदान करते, ठीक है तुम्हें भोग करना तो भोग करो, और साथ में उन्हें अवसर प्रदान करते हैं जिससे वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सके। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेक अनेक जन्मों के बाद सत्य ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमल की शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं। अब वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्या, कौन, जो कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस संसार में अनेकों अनेक जीव होते हैं लेकिन वो इस सत्य को स्वीकार नहीं करते। इन्हें क्या कहते हैं भगवान बता दें, श्रीमद् भगवत गीता में 7.23 में अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसा। वो अल्पमेधसा होते, श्रील प्रभुपाद जी बोलते राजकल समझते नहीं है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान ही समस्त कारणों के कारण, जितना भी उनको बताया जाए उनकी अक्कल में बात आती नहीं, इसलिए उसको अल्पमेधसा कहा गया। मूढ़ो यम ना भी जानाती, भगवान कहते वो मूढ़ है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते गधे हैं। गधे इसलिए कि वो सारा दिन श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, और संतुष्टि के रूप में उन्हें क्या मिलता है, सिर्फ दो वक्त की रोटी या रहने के लिए घर, ये है संतुष्टि उनके जीवन की। क्योंकि संतुष्टि वो है कि आपको कभी किसी चीज के लिए फिर परेशान ना होना पड़े, ऐसी जगह की प्राप्ति जहाँ से आपको कभी निकाला ना जाए। तो जैसे गधा है, उसको उसका जो मालिक होता है स्वामी, उसको सारा दिन उसे कार्य कराता 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 रात में उसको घास दे देता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इतना बेवकूफ है वो घास खा के संतुष्ट हो जाता है। इसीलिए ये जीव भी उस गधे की तरह है, क्योंकि वो सिर्फ रोटी और एक घर या फिर है ना एक सामाजिक सुविधाएं प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है। उसको इतनी अक्कल नहीं है कि यदि मैं भगवान के पास चला जाऊंगा तो इन चीजों के लिए मुझे परिश्रम ही नहीं करना पड़ेगा, है ना। गधे को इसीलिए गधा कहा जाता है कि वो है ना समझ ही ना रहा है कि वो अगर इस केज से छूट जाएगा तो घास तो उसे बगैर परिश्रम की मिल जाएगी। तो यह संतुष्टि जो हमें यहाँ पर इतनी परिश्रम के बाद मिल रही है वो इस पवर्ग में मिल रही, और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए परिश्रम ही नहीं करना पड़ेगा फिर वहां पर जाने के बाद। तो फिर उसके लिए परिश्रम तो वैसे ही कर रहा है, भौतिक चीजों के लिए क्यों कर रहा है, उधर जाने के लिए करे ना, जहां पर जाकर कोई परिश्रम रह नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो जीव इतने भाग्यशाली हैं कि भौतिक संसार में अनेक अनेक जन्मों के बाद सत्य ग्रहण करके वासुदेव की चरण कमल को शरण ग्रहण करते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ जाती, नहीं पड़ती। क्यों? भगवान कहते हैं यद कृत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम। जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जो भगवान की शरण में आ जाते हैं, और भगवान कहते हैं यान्ति मध्या जिनोपि मम, जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे पास आते हैं, और भगवान आगे कहते हैं कि जो मेरे पास आ जाते हैं यद कृत्वा न निवर्तन्ते, उन्हें वापस इस संसार में आना नहीं पड़ता। लेकिन आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते हैं वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महातत्व में पुनः मिल जाते हैं। ठीक है, अब जिन्होंने स्वीकार कर लिया वो नित्य मुक्त जीवों के साथ गोलोक वृंदावन धाम में चले गए, लेकिन जो अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए तो कल्प क्षय पुनस्थाने कल्पादौ विसृजा, कल्प का अंत होने पर सृष्टि का तो लय हो गया। अब उस समय उन जीवों का क्या होता है उसके विषय में बता रहे हैं कि सृष्टि के लय के समय महतत्व में पुनः मिल जाते हैं। ठीक है, वह महतत्व में वो मिल जाते हैं, और जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महतत्व पुनः उन्मुक्त होता है। इस महतत्व में जगत के सारे अव्यय होते हैं जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित होते हैं। अब महतत्व में सब कुछ होता है। अब यह महतत्व अभी बताएंगे कारण दर्शन विष्णु के ही अंदर होता है, और सारे जीव सब कुछ जो भी क्षय हुआ वो सब उसके अंदर जमा हो जाएंगे सारे जीव, और जब सृष्टि की उत्पत्ति होगी तो वहां से निकलेंगे। इस महतत्व में जगत के सारे अव्यय होते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, षोडश कलम, ये सब इसके अंदर होता है जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित है। मूलतः यह महतत्व 16 अंशों में विभक्त है। 16 अंश यहाँ पर बताए हैं, ये हैं 5 स्थूल तत्व, कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और तथा 11 इंद्रियां। 11 इंद्रियां कौन सी? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। ठीक है, यह निर्मल आकाश में बादल के समान होता है। अब यह महातत्व कैसा है? गोलोक वृंदावन धाम एक बहुत बड़ा निर्मल आकाश है, और बादल का एक छोटा टुकड़ा जो है उसके अंदर होता है, तो ये महातत्व की तरह है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चतुर्जग फैला रहता है, और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से जाज्वल्यमान रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महातत्व एकत्रित होता है, और आकाश का जितना भाग महातत्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। ठीक है, वास्तविक में पूरा भगवान का जो है ना चतुर्दक फैला होता है, ब्रह्म जो है ना प्रकाश वो सारी जगहों पे फैला होता है, और इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी एक कोने में महतत्व एकत्रित होता है। अब ये नजर आ रहा है ना कि सृष्टि का जो महतत्व है जिसको हम बहुत विराट स्वरूप कहते हैं, ऐसा नहीं कि वो छोटा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये है कि वास्तविक जो गोलोक है आध्यात्मिक आकाश है वो बहुत बड़ा है, वो एक कोने में होता है। आकाश का जितना भाग महतत्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। ठीक है, वो भौतिक आकाश है, और महतत्व का यह भोग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। अब लेकिन है ना, यहाँ वशिष्ठ प्रभुपाद जी बोलते हैं, अब ये आध्यात्मिक आकाश इतना बड़ा है कि वो बिल्कुल निगरणीय है, वो उसकी काउंटिंग में नहीं आता है। तो छोटा सा है कि तो छोटा सा हमारा ये जितने उसके अंदर लोक है, 14 लोक उसी के अंदर है, लेकिन वो फिर भी आध्यात्मिक आकाश के सामने राई के एक दाने के बराबर, छोटा सा राई का दाना होता है ना, उसके बराबर है। इस महातत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये सारे ब्रह्मांड कारण दक्षाय विष्णु या महाविष्णु द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से ही उत्पन्न होते हैं। ये बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर बताएं कि इस महातत्व के भीतर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड होते हैं, और ये ब्रह्मांड आ कहाँ से रहे हैं? ये सारे ब्रह्मांड कारण दक्षाय विष्णु या महाविष्णु द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते। अब देखो, आध्यात्मिक पूरा आध्यात्मिक आकाश है, उसमें छोटा सा भौतिक आकाश है, और वो भौतिक आकाश वो प्रकृति है, समझो महातत्व प्रकृति है। प्रकृति क्या होती है? स्त्री होती है। स्त्री कभी भी पुरुष के साथ के बगैर जो है वो कुछ नहीं कर सकती है, उत्पत्ति नहीं कर सकती है। इसलिए वो जो कारण दक्षाय विष्णु है ना, महाविष्णु, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, जिसके कारण ये असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। इसका कहाँ पर बताया गया है? श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 4 में हमने इसको बहुत सुंदर पढ़ा था, याद है आपको क्या लिखा है? सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत्योनि अहं बीज प्रदपिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा ही संभव है, और मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। इस श्लोक में ये स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं, और सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से होता है। अब देखो, भौतिक प्रकृति हमने सुना, आध्यात्मिक प्रकृति तो ये वहां पर जो आध्यात्मिक आकाश है ना, उसकी आध्यात्मिक प्रकृति का एक अंश है क्या? कारण दक्षाय विष्णु। तो जब तक कारण दक्षाय विष्णु यानी आध्यात्मिक प्रकृति का भौतिक प्रकृति के साथ संयोग नहीं होता है, तब तक कोई भी उत्पत्ति नहीं होगी, है ना। इसलिए ये सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण द्वारा प्रकट होते हैं। यानी तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों का को गर्भ में धारण किए हैं, ठीक है। भौतिक जगत प्रकृति है और समस्त जीवों को गर्भ में धारण किए हुए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होता है। अब वापस से जब कल्पक्ष या पुनस्थानी कल्पाद अविसृजा में दूसरा कल्प होता है, तो जो अभी जीव जो अभी तक मुक्त नहीं हुए थे ना पहली बारी, और वो तो महातत्व में जमा हो गए, अब उस महातत्व पे जब वापस से भगवान की सृष्टि उत्पन्न करते हैं, भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, तो कारण दक्षाय विष्णु के रूप में पुरुष अवतार लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः। तो फिर वो भगवान जो है वो जब पुरुष रूप लेते हैं, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस जो भौतिक आकाश है यानी प्रकृति है उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, और फिर क्या होता है, वापिस से जो जमा हो गए थे वो सब उत्पन्न हो जाते हैं। वापिस जिन्होंने जो जैसे कर्म किए थे और उसी के अनुसार उन सारे ब्रह्मांड पैदा होते हैं, और सारे ब्रह्मांड के अंदर सारे जीव भी पैदा हो जाते हैं। कारण दक्षाय विष्णु के विषय में आज हमने पढ़ा, अत्यंत ही सुंदर ये टॉपिक्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे। कृपया साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।